नमस्कार भारत, 20 मई दिन रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के नेता एचडी कुमार स्वामी बुधवार को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सवाल बरकरार, 2019 में बीजेपी को घेर पाएगा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का गठजोड़।
ये सब क्षेत्रीय दल एक फ्रंट बनाए और ये फ्रंट कांग्रेस को अपने साथ ले। जब आप बीजेपी को 1-to-1 कॉन्टेस्ट देंगे तब आपको शायद 2019 में कुछ करने का चांस मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशासित कश्मीर में किया किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन, पाकिस्तान करता रहा है विरोध। बीबीसी न्यूज मेकर्स में बात करेंगे भारत की व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान सोमजीत सिंह से।
जो चीज स्टार्ट की उसको कभी छोड़ के नहीं जाते, उसके लास्ट मोमेंट तक पहुंचो, जो भी सक्सेस है फेलियर है वो झेलो, लेकिन उसको।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित करने को कहा है। इसके साथ ही जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले सोमवार को शपथ लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। क्यूबा में हुए विमान हादसे की जांच कर रहे जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसमें उड़ान के दौरान की रिकॉर्डिंग रहती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह ब्लैक बॉक्स ठीक स्थिति में है। अधिकारियों के अनुसार क्यूबा की राजधानी हवाना के पास हुए इस विमान हादसे में 110 लोगों की मौत हुई है। जिन 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। क्यूबा में इस हादसे की वजह से 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। निकारागुआ में पिछले कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए समझौते के दूसरे दिन सरकार पुलिसकर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई है। छात्रों के नेतृत्व वाले विपक्ष और सरकार के बीच पिछले कई हफ्तों से चल रहे संघर्ष में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। एक छात्र नेता ने सरकार से अपील की है कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग बनाएं। छात्र नेता विक्टर कुद्रस ने कहा,
Entonces, si ellos no demuestran esta voluntad política, el día lunes los tranques arreciarán.
अगर वे अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा सकते तो सोमवार को हम और अधिक मजबूती से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बदल जाएगा। ये थे एक छात्र नेता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में कुछ पिछड़े इलाकों में सेना के समर्थन से चलाए जा रहे अभियान में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में एक व्यक्ति की पहचान डी रसिया नाम के गैंग के नेता के रूप में हुई है जिस पर गैंग रेप में शामिल होने के आरोप थे। इराक के संसदीय चुनाव में शिया सेना के पूर्व प्रमुख मुक्तदा अल सद्र के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली है। सद्र लंबे समय से अमेरिका के विरोधी रहे हैं। उन्होंने इराक में खुद को भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में स्थापित किया है, साथ ही वे ईरान के भी मुखर आलोचक रहे हैं। सद्र खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वे प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में नहीं उतरे थे, लेकिन नई सरकार के गठन में उनकी अहम भूमिका रहेगी। बगदाद में मौजूद सद्र के एक अधिकारी ने बताया,
We don't want to govern solely. We would like to form a government that represents
your. हम अकेले सत्ता अपने हाथों में नहीं रखना चाहते। हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो इराक के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। हम सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस पर हावी नहीं होना चाहते। हम देश के संस्थानों पर अपना कब्जा नहीं करना चाहते। हम शासन की जगह बदलाव में विश्वास रखते हैं। ये थे सदर के एक अधिकारी के शब्द। कांस फिल्म फेस्टिवल में उस वक्त सभी लोग हैरान रह गए जब इटली की अभिनेत्री एसिया एग्रेंटो ने कांस को हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वीनस्टीन का हंटिंग ग्राउंड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 1997 में जब वे 21 साल की थीं तब हार्वी वीनस्टीन ने कांस में उनका यौन शोषण किया था। शुक्रवार को आयोजित हुए इस समारोह में जापानी निर्देशक हिरोकाजो कोरेइदा की फिल्म शॉपलिफ्टर को सर्वोच्च सम्मान पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया। विंडसर किले में हुई शाही शादी के बाद प्रिंस हैरी और मेगन मार्किल पति पत्नी बन गए। इस शाही शादी के गवाह गिरजाघर के घर में मौजूद 600 मेहमान बने। शादी के दौरान शाही जोड़े ने कस्में खाईं और एक दूसरे को अंगूठियां पहनाईं। इस शाही शादी के मेहमानों में अमरीकी टीवी स्टार ओपरा विनफ्रे, अभिनेता एड्रिस एल्बा, अभिनेता जॉर्ज क्लूनी और फुटबॉलर डेविड बेकहम शामिल हुए। बीबीसी समाचार।
बी बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कल कर्नाटक के लिए राजनीतिक उठापटक से भरा दिन था। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल वजुभाई वाला ने एचडी कुमारस्वामी को सरकार बनाने का न्योता दिया। जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के गठबंधन के नेता एचडी कुमारस्वामी अब 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मगर अभी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस और जेडीएस का यह गठबंधन कर्नाटक को स्थिर सरकार दे पाएगा। इसी पर सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटक एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस महीने दक्षिण का यह राज्य तीसरा मुख्यमंत्री देखने जा रहा है। मई के 15 तारीख तक यानी चुनाव के दिन तक सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे। चुनाव के बाद बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, मगर बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अब आने वाले बुधवार को एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद कुमारस्वामी ने कहा, राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हम खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अहम कांग्रेस नेताओं के अलावा क्षेत्र नेताओं को शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को बुलाने वाले हैं। ये थे एचडी कुमारस्वामी के शब्द। कल बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के बाद जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं ने चैन की सांस ली, खासकर तब जब बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई। इस बात से जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन को जितनी खुशी हुई उतनी ही बेचैनी भी बढ़ गई, क्योंकि दोनों दलों ने एक बहुत ही मुश्किल चुनावी मुकाबला लड़ा है। फिर भी इन हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि ये गठबंधन कितने दिन तक चल सकता है, खासकर जब दोनों पक्ष धर्मनिरपेक्ष हैं पर दूसरे मामलों में काफी दशकों से एक दूसरे के विरोधी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भास्कर राव कहते हैं, हमें नहीं लगता है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन टूटेगा, लेकिन एचडी देवेगौड़ा बहुत सारे विषयों पर सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत करेंगे। इस गठबंधन के विषय बहुत होंगे, मंत्रियों के विभागों से लेकर शासन और अगले साल के चुनाव में टिकटों के बंटवारे तक। ये थे भास्कर राव के शब्द। मैसूर विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल प्रोफेसर मुजफ्फर असदी इस गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर अलग नजरिया रखते हैं। उन्होंने कहा, इस गठबंधन में बेचैनी बेशक होगी, लेकिन ये अपवित्र नहीं है। ये उसी तरह जीवित रहेगा जिस तरह कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए या बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। मगर ये तो देखना होगा कि कितने दिन तक कांग्रेस जेडीएस की जूनियर साथी बनी रहेगी और वो इस बात पर सहमत रहेगी। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि अगर ये गठबंधन टूटा तो ये फिर से वापस सत्ता में नहीं आएगा। ये थे प्रोफेसर मुजफ्फर असदी के शब्द। प्रोफेसर असदी मानते हैं कि अगर इस गठबंधन को बनाए रखना है तो दोनों दलों को एक समन्वय समिति बनानी चाहिए और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलानी चाहिए। यानी यह मामला जितना कठिन दिखता है ये उससे भी ज्यादा पेचीदा है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
इस समय बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बेंगलुरु से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से लेकर सरकार बनाने को लेकर जो पूरी खींचतान हुई है उसको आपने बहुत करीब से देखा। हमने राजनेताओं के बयान तो सुने, लेकिन इस पूरी उठापटक पर कर्नाटक की जनता क्या सोचती है, क्या उम्मीदें हैं उसकी?
बिल्कुल, दरअसल हम यहाँ पर करीब एक हफ्ते भर से हैं और वो पूरा जो सिलसिला नतीजे आने का, फिर बहुमत ना किसी को मिलने का, फिर वो जुगत हॉर्स ट्रेडिंग के जो है एलिगेशंस और तमाम चीजें, लेकिन इस सब के बीच जो आम आदमी है बेंगलुरु और उसके आसपास जहां तक हम पहुंच सके हैं, उनको ये लगता था कि ये सब बिला वजह हो रहा है। उनको ये समझ में आ रहा था, ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये जो सरकार बनाने की जुगत है ये बढ़ावा देती है हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह की चीजों को। और ज्यादा से ज्यादा आदमी जो जाहिर है कि जो हार्ड कोर एकदम किसी पार्टी के फैन है, समर्थक है, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो किसी अंत तक चले जाएंगे, लेकिन जो जरा से भी न्यूट्रल आदमी थे वो सब लोग ये लगातार कह रहे थे हमसे कि स्थायी सरकार की जरूरत है प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और आगे ग्रोथ के लिए स्थायी सरकार की जरूरत है। और ज्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि जो ये भले ही चुनाव के बाद का गठबंधन हो, लोग ये बात कहते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये सरकार चलेगी चलेगी पांच साल, क्योंकि ये बड़ा पोल के बाद का अलायंस है और आपस में काफी तनाव भी है दोनों में, लेकिन लोगों को लग रहा था कि मौका इनको मिलना चाहिए एक स्थायी सरकार बना के सामने रखने का।
जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन बता रहे थे कि वहाँ कर्नाटक में लोग क्या सोचते हैं और इस पूरी ये जो राजनीतिक खींचतान हुई उसे वो किस तरह से देख रहे थे। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव और इसके बाद के घटनाक्रम पे सभी की निगाहें इसलिए भी थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तरह का सेमीफाइनल है, मगर अब जब बीजेपी को बहुमत साबित न कर पाने के कारण एक कदम पीछे हटना पड़ा है, उसका 2019 पर क्या असर हो सकता है, इसी पर सुनिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता गंवाने को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल 2019 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को चुनौती देने के लिए एकजुट होने के मौके के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या बाकी दल कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो पाएंगे? वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण कहते हैं,
एकजुट होने के कई तरीके हैं। एकजुट होने का कांग्रेस का तरीका ये था कि कांग्रेस बीच में हो और बाकी पार्टियां उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएं। ये ऐसा जमावड़ा कांग्रेस के इर्द गिर्द नहीं लगेगा। एकजुट होने का दूसरा तरीका ये है कि जिस राज्य में जो पार्टी स्ट्रांग है वो वहाँ की डोमिनेंट पार्टी मानी जाएगी और ये सब क्षेत्रीय दल अपना एक संगठन बनाए, एक फ्रंट बनाए और ये फ्रंट कांग्रेस को अपने साथ ले, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे सीधा सीधा कॉन्टेस्ट है बीजेपी के साथ, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, तो वहां पे उनको कांग्रेस को भी अहमियत देनी पड़ेगी। इन राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब आप बीजेपी को 1-to-1 कॉन्टेस्ट देंगे तब आपको शायद 2019 में कुछ करने का चांस मिलेगा।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह हर प्रदेश की परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन करेगी। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर प्रदेश में हालात के मुताबिक निर्णय करती है। 2004 से पहले ये कहते थे कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार नहीं चला सकती। सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक उसे झूठ साबित किया। हमने मोदी जी की तरह अलाइज खोए नहीं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी का वो ये चाहते हैं कि सत्ता एकमात्र उनके लिए केंद्र और लक्ष्य है और किसी हालत में किसी प्रकार से वो सत्ता पाना चाहते हैं। सत्ता उनके लिए व्यवस्था बदलने का माध्यम नहीं, सत्ता उनके लिए आखिरी निशाना है। यही कांग्रेस और उनमें अंतर है और इसीलिए अधिक से अधिक राजनीतिक दल धीरे धीरे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ते जा रहे हैं।
वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर एक पिछलग्गू पार्टी की भूमिका स्वीकार कर ली है और अब वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं,
देखिए जो कुछ पिछले 3-4 दिन में हुआ है उस घटनाक्रम का पहला निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस अब संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व तो छोड़िए, संयोजकत्व यानी लीडरशिप तो छोड़िए, कोऑर्डिनेशन करने की भी अथॉरिटी या अधिकार खो चुकी है। अब उसने अपने को पिछलग्गू के रूप में स्थापित करने के लिए अपने को समझा लिया है। यदि कर्नाटक जैसे राज्य जिसको वर्षों तक रूल कर चुके हैं उसमें वो एक सेकंड फिडल यानी पिछलग्गू का रोल प्ले करने को तैयार है, तो वो पूरे भारत की राजनीति में ये करने को तैयार है। आज कांग्रेस की स्थिति हो गई कि अब उसके सिर्फ 2 राज्यों में मुख्यमंत्री रह गए, एक पंजाब और एक पुदुचेरी। अगर कर्नाटक में वो सरकार में शामिल होंगे तो 2.5 राज्य वो चला रहे होंगे और मैं मानूंगा कि ये भाजपा का युग है। सब लोग भी विरोध करेंगे पर अंततः हम अपने समर्पण, निष्ठा और कार्यकर्ताओं की मेहनत, मोदी जी की अपार लोकप्रियता के द्वारा जनता का सहयोग, समर्थन प्राप्त करने में सफल होंगे।
दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी 2019 का चुनाव दूर है और इस दौरान राजनीति में कई नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। देखना यही होगा कि केंद्रीय सत्ता में मजबूती से टिके नरेंद्र मोदी को क्या ये समीकरण हिला पाएंगे। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत प्रशासित कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी और किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन भी किया। इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने कई बार आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का आरोप है कि इस परियोजना में दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बने नियमों को तोड़ा गया है। वहीं प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा के विरोध में अलगाववादियों ने बंद का आह्वान भी किया था, जिसके बाद श्रीनगर समेत कई इलाकों में नाकेबंदी भी की गई। इसी पर सुनिए श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से कल सवेरे सीधे लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने करगिल और कश्मीर के बीच टनल के काम की नींव रखी। बाद में उन्होंने लद्दाखी बौद्ध नेता कौशिक बकोला की याद में हुए एक समारोह को संबोधित करते हुए विकास के लिए लद्दाखियों के दृढ़ निश्चय की तारीफ की।
एक प्रकार से पूरे कश्मीर घाटी की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी खींचने की ताकत अब लेह और लद्दाख में आ रही है। बहुत बड़ा काम आपने विकास कर करके कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना दे दिया है।
लेह से मिस्टर मोदी श्रीनगर पहुंचे और यहां वीडियो लिंक द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुरेज क्षेत्र में बने किशन गंगा पन बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि एक ही दिन में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखकर जम्मू कश्मीर में विकास के नए दौर का आरंभ किया है। उन्होंने कश्मीरी युवाओं से अपील की कि वो अपने परिवार वालों और यहां की जनता के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दें।
और मेरा आग्रह है, जो नौजवान रास्ता भटक गए वो मुख्य धारा में वापस लौट गए। ये मुख्य धारा है उनका परिवार, ये मुख्य धारा है उनके माता पिता, ये मुख्य धारा है जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी। इस युवा पीढ़ी पर ही जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाने की।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह से संबोधित होते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बहाल करें ताकि कश्मीर में शांति के लिए हो रहे प्रयास सफल हो जाएं।
मगर मुझे मालूम है जब आप पाकिस्तान गए तो किन मुश्किल हालात में गए। आपने करने की कोशिश की आपने, मगर वहाँ से जवाब मुस्बत नहीं मिला। मगर मुझे उम्मीद है आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है कि आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे।
गौरतलब है कि जहलम पर बने किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान अक्सर आपत्ति जता रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट की ऊंचाई उन नियमों के मुताबिक नहीं रखी है जो इंडस वाटर ट्रीटी में तय थे, जिसके कारण पाकिस्तान को पानी की कमी की समस्या हो रही है। इस दौरान नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा के विरुद्ध कल घाटी बंद रही और पुलिस ने श्रीनगर और दूसरे क्षेत्रों में कड़ी नाकाबंदी करके अलगाववादियों के मार्च को विफल कर दिया। गौरतलब है कि भारत सरकार ने रमजान के महीने में चरमपंथियों के विरुद्ध चल रहे सैन्य ऑपरेशन को रोक दिया है। सीज फायर की इस घोषणा को अलगाववादियों ने नुमाइशी बताया है, जबकि चरमपंथी गुट्टू ने भी इसे रद्द किया है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शाही शादी। दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटेन में जश्न का दौर जारी है। पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाली इस शाही शादी को लेकर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं नवीन नेगी।
ब्रिटेन में महारानी के पोते की शादी का जश्न जारी है। विंडसर किले में हुई शाही शादी के बाद प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल पति पत्नी बन चुके हैं। इसके गवाह गिरजाघर में मौजूद 600 मेहमान बने, जिनमें कई हस्तियां शामिल थीं। शाही शादी के दौरान विंडसर में हजारों शुभचिंतक मौजूद रहे। इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जो रात से ही वहां इकट्ठा थे और ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां से उन्हें शाही शादी का नजारा दिख सके। ऐसी ही एक प्रशंसक लिंडसे हैनर ने कहा,
That was absolutely glorious. It really was beautiful to be part of history.
इतिहास का हिस्सा बनना बेहद खूबसूरत था। यह सब इतने करीब से देखना भी कमाल का था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं और हैरी खुश नजर आ रहे थे। आप उनकी आंखों में खुशी देख सकते थे। इसे करीब से देखना वाकई लाजवाब अनुभव था। ये थे प्रिंस हैरी की एक प्रशंसक के शब्द। ब्रितानी लेखक और ब्रॉडकास्टर अफवा हिरश ने बीबीसी को बताया कि इस विवाह समारोह में हैरी और मेगन दोनों की पृष्ठभूमि की भी झलक देखने को मिली।
It felt as if it was quite a powerful blend of obviously the tradition and pageantry.
ऐसा लगा कि ये परंपराओं और तड़क भड़क का मिश्रण था। इसमें दुनिया का सबसे पुराना रहने लायक महल और नाइट्स देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी अमरीकी परंपराओं की झलक भी मिली। ये थे ब्रितानी लेखक अफवा हिरश के शब्द। प्रिंस हैरी राजगद्दी पर बैठने वालों के क्रम में छठे नंबर पर आते हैं। उन्हें उनकी दादी महारानी एलिजाबेथ ने ड्यूक ऑफ ससेक्स की उपाधि दी है। इस तरह से इस शादी के बाद मार्कल डचेस ऑफ ससेक्स बन गई हैं। शाही शादी का जश्न पूरे देश में मनाया गया और इस दौरान पार्टियों का दौर भी जारी रहा।
ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ मौजूद हैं नवीन नेगी। नवीन, क्या कहते हैं अखबार?
जी आदर्श, आज के तमाम समाचार पत्रों में कर्नाटक की राजनीति में कल हुए बड़े घटनाक्रम को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, येदुरप्पा 2.5 दिन के मुख्यमंत्री। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी लगाई है, ये दी एंड। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मोदी कृषि फेल, डेमोक्रेसी पास। इसके साथ ही अखबार ने साल 1996 में एचडी देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने का जिक्र किया है और अब उनके बेटे के मुख्यमंत्री बनने की जो कहानी है उसको एक फिल्मी कहानी के रूप में बताया है। और उस वक्त 96 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बनने का इस्तीफा दिया था उन्होंने, और इस बार येदियुरप्पा ने 2.5 दिन के बाद मुख्यमंत्री बनने का इस्तीफा दिया है। अन्य खबरों की तरफ बढ़ें तो कल प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल की शादी की खबरें भी आज के अखबारों में तस्वीरों के साथ प्रकाशित हुई हैं। नवभारत टाइम्स ने प्रिंस चार्ल्स और मेगन मार्केल की एक तस्वीर प्रकाशित की है और लिखा है कि बहू को बेटी का मान दिया और उसके साथ विदाई की। इस शाही शादी में प्रिंस चार्ल्स ने बेटी और बहू के भेद को खत्म किया क्योंकि मेगन के पिता बीमारी के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, तो इसलिए प्रिंस चार्ल्स ने दुल्हन के पिता की रस्में निभाई। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर दौरे की खबर को प्रकाशित किया है और इसमें जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। और अब उर्दू समाचारों, उर्दू अखबारों की समीक्षा का समय है। मानसी बताएं क्या कुछ खबरें हैं।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी के अलावा वहां होने वाले आम चुनाव की तैयारी से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ से होने वाली गोलीबारी की। अखबार जंग ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि भारतीय सेना की तरफ से हुई गोलीबारी में एक महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई है। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने भी इसका डटकर जवाब दिया और बदले की कार्रवाई में भारतीय सेना की कई चौकियों को नष्ट कर दिया गया और भारतीय सैनिक भी मारे गए हैं। अखबार आगे कहता है कि पाकिस्तान ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए इस्लामाबाद में तैनात भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को विदेश मंत्रालय बुलाकर उन्हें विरोध पत्र भी सौंपा है। रोजनामा एक्सप्रेस में मारे जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के नाम भी छापे हैं। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश सचिव का दावा है कि भारत ने साल 2018 में अब तक 1050 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारत की तरफ से हुई गोलीबारी में अब तक 28 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। तो उर्दू प्रेस रिव्यू को इकबाल अहमद ने तैयार किया था जिसे आप सुन रहे थे मानसी दास से। भारत बांग्लादेश के बीच 4 से 8 मई के बीच खेली गई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज में भारतीय टीम शानदार जीत हासिल करके लौटी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेली गई इस सीरीज को भारतीय खिलाड़ियों ने 2-0 से जीता। इस बार न्यूजमेकर हैं इसी टीम के कप्तान सोमजीत सिंह, जिनसे बात की हमारी सहयोगी राखी शर्मा ने।
सोमजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी न्यूजमेकर्स पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जीतने वाली टीम के कप्तान हैं आप, टीम बांग्लादेश को 2-0 से हरा कर आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम बांग्लादेश गए थे, ये हमारा पहला चांस का टूर था बांग्लादेश की धरती पे जाना। ढाका में हमने 3 मैच की सीरीज खेली और काफी पॉजिटिव हम लेके गए थे अपनी तरफ से। हमने अपने प्रैक्टिस कैंप में भी काफी ज्यादा अच्छी मेहनत की थी जिसके कारण हम ये 2-0 से मैच जीत पाए।
सोमजीत जी हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में बताइए कि भारतीय टीम को विदेशी दौरा कराने में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का हाथ किस तरह से रहा है।
जब ये टूर की घोषणा हुई तो इसमें सचिन सर का जो कंट्रीब्यूशन आया वो बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही बड़ा मूवमेंट था एक व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए। और हम आशा करते हैं सचिन सर ऐसे ही हमें आगे भी हेल्प करते रहें। ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए क्योंकि इससे पहले ICC या BCCI जिसको आप इतना बड़ा रिचेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड क्रिकेट में मानते हो और आप वो आगे भी नहीं आता है हेल्प करने तक के लिए। एक एफिलिएशन देना तो दूर दूर, एक हेल्प तक नहीं करता, तो इससे बड़ा ही बुरा लगा। लेकिन उन्हीं के एक प्लेयर, एक इतने गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने आके हेल्प की और इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता था।
सोमजीत कम से कम इस जीत के बाद तो आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गए हैं। ऐसे में आप ही से जानना चाहेंगे कि आपकी कहानी क्या है। जाहिर तौर पर व्हील चेयर क्रिकेट का जो आपका सफर है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा।
जी मुझे बाय बर्थ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी जिसे माइनिंगो माइलोस्टील बोलते हैं, स्पाइनल ट्यूमर, और उस कारण से मेरा मुझे पैरालिसिस हो गया बिलो वेस्ट और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरी मदर जो हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल है मेरी अपब्रिंगिंग में, उनके सपोर्ट से शायद ही सबसे पहला उनका सपोर्ट ये था कि तुम एजुकेशन पूरी करो क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया था वो बुंदेलखंड का छोटा सा टाउन है उरई करके, तो आप समझ सकते हैं जब मैं मेरा बर्थ हुआ तो उस टाइम में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बुंदेलखंड में। आज भी हो रहा है वो, बट इतना इम्प्रूव अभी भी नहीं है। तो इसी के चलते एजुकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन मेरी मदर का जो सपोर्ट है मेरे लिए, मेरे फादर का जो सपोर्ट है मेरे लिए,
वो ही काफी मोटिवेशन देता है। लेकिन कल भी अगर मैं इस चीज को बोलूं कि नहीं मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, तो मेरी मदर ही आके कहती है नहीं, जो चीज स्टार्ट की उसको कभी छोड़ के नहीं जाते, उसके लास्ट मोमेंट तक पहुंचो, जो भी सक्सेस है फेलियर है वो झेलो, लेकिन उसको कंप्लीट करके जाओ।
सोमजीत, आपको जो लोग सुन रहे हैं उन्हें किस तरह से समझाएंगे कि व्हील चेयर क्रिकेट आखिर कैसे खेला जाता है? क्या इसके नियम अमूमन खेले जाने वाले क्रिकेट से कुछ अलग होते हैं?
जी, पहली बात तो व्हील चेयर क्रिकेट में सबसे जो डिफरेंसेस है वो उसकी पिच साइजेस, हमारे पिच जो होती है वो 18 गज होती है और हमारी बाउंड्री जो होती है वो 45 मीटर की होती है। एक आम बाउंड्री 60 से 55 मीटर की होती है, लेकिन हमारी 45 की, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। विकेट हाइट भी सेम है, सारे हम LBW भी लेते हैं, लेग बिफोर विकेट, नो बॉल, वाइड बॉल, सारे चीजें हैं, हम वही बैट से खेलते हैं, लेदर बॉल से खेलते हैं। तो आप कह सकते हैं जब इस चीज को आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक इस चीज को आप महसूस भी नहीं करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी दर्शक हैं वो आगे इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे इस चीज को देखें।
सोमजीत, जैसे आपने बताया कि आपने BCCI को भी अप्रोच किया था मदद के लिए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, तो क्या थोड़ी निराशा होती है ये जानकर कि इतनी सशक्त बॉडी है देश में क्रिकेट का संचालन करती है लेकिन जरूरतमंद क्रिकेटरों के काम नहीं आती?
जी, मुझे इस चीज पे हंसी आती है कि एक IPL कराने वाला फ्रेंचाइज अगर वो कर सकते हैं और इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं आप अपनी लाइमलाइट के लिए, लेकिन आपके पास कुछ पल नहीं है, कुछ टाइम नहीं है एक ऐसी टीम को सपोर्ट करने के लिए जो आपके प्लेयर्स के लिए भी एक मोटिवेशन काम कर सकती है आगे चल के। और इसी के कारण मुझे बड़ा ही मलाल तो रहेगा क्योंकि अभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट एक आशा मेरी है अगर वो एक पूरी क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है हमारे भारत की, अगर वो ये एक स्टेप ले आगे जाके और अपनी चीज को फिर से सुधार के वो लाए और इस चीज को एफिलिएशन और रिकॉग्नाइज करे, तो इसका स्ट्रक्चर और अच्छे से हो सकता है। एफिलिएशन एक आइडेंटिटी दे देगा इस क्रिकेट के लिए, इससे हमें बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों से हेल्प ना मांगनी पड़े। लेकिन अब जैसे सचिन जी ने हमारी हेल्प की है, आगे आगे अब हम आशा करते हैं कि एक साल के अंदर शायद BCCI भी कुछ हमारी मदद करे।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। पहले दिल्ली डेयर डेविल्स और उसके बाद कल विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी आधिकारिक रूप से IPL के प्लेऑफ मुकाबलों से बाहर हो गई है। कल बेंगलोर को जयपुर में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही राजस्थान रॉयल्स के हाथों 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलोर के सामने जीत के लिए 165 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 19.2 ओवर में महज 134 रन पर सिमट गई। बेंगलोर के ABD Villiers ने 53 और पार्थिव पटेल ने 33 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली केवल 4 रन ही बना सके। लेग स्पिनर श्रेयश गोपाल ने 16 रन देकर 4 विकेट झटके। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने राहुल त्रिपाठी के नाबाद 80, कप्तान अजिंक्य रहाणे के 33 और क्लासेन के 32 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। कल की जीत के साथ ही 14 अंकों के साथ राजस्थान ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिस लिन के 55 और रोबिन उथप्पा के 45 रनों की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। कोलकाता के सामने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य था जो उसने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले हैदराबाद ने शिखर धवन के 50, श्रीवत्स गोस्वामी के 35 और कप्तान केन विलियमसन के 36 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 172 रन बनाए। इस जीत के साथ ही कोलकाता प्लेऑफ में पहुंच गई है। इससे पहले हैदराबाद और चेन्नई भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। चौथी टीम का पता आज चलेगा। उधर दक्षिण कोरिया में खेली जा रही एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज भारत और मेजबान दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा।
और विदा लेने से पहले मुख्य समाचार नवीन नेगी से।
BBC समाचार। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब JDS और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। JDS के HD कुमारस्वामी बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्यूबा में हुए विमान हादसे की जांच कर रहे जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, वह अच्छी स्थिति में है। क्यूबा की राजधानी हवाना के पास हुए इस विमान हादसे में 110 लोगों की मौत हुई है। निकारागुआ में पिछले कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए समझौते में दूसरे दिन सरकार पुलिसकर्मियों को वापस बुलाने के लिए सहमत हो गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इटली की अभिनेत्री एसिया अर्गेंस्टो ने कांस को हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वेनस्टीन का हंटिंग ग्राउंड बताया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को दें इजाजत। नमस्कार।